آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ आज के मुख्य समाचार में, रशिया में एक युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारी ने स्टैंड लेते हुए रूसी समाचार के एक प्रसारण को बाधित किया। पुलिस सिडनी के भीतरी पश्चिम में एक घर में लगी आग की जांच कर रही है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। और खेल में, ऑस्ट्रेलिया के गोल्फ खिलाड़ी कैमरन स्मिथ ने प्लेयर्स चैंपियनशिप के रूप में अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। एक रूसी राज्य टेलीविजन चैनल 1 कर्मचारी महिला ने एक लाइव समाचार बुलेटिन के दौरान युद्ध विरोधी बयान किया है और चैनल के लिए काम करने के लिए माफी मांगी है। महिला ने स्टूडियो प्रस्तोता के पीछे एक युद्ध विरोधी संकेत रखा और कुछ सेकंड के लिए युद्ध बंद करो, युद्ध ना करो के नारे सुनाई दिए। उसे स्क्रीन से हटाने के लिए चैनल ने जल्दी से एक अलग रिपोर्ट कर स्विच कर लिया। महिला का नाम मरिया ओवसियानिकोवा रखा गया है, जो चैनल 1 की एक कर्मचारी हैं। घटना से पहले रिकॉर्ड किए गए एक ऑनलाइन पोस्ट वीडियो में सुश्री ओवसियानिकोवा ने खुद को प्रसारक का कर्मचारी बताया और कहा कि क्रेमलिन प्रचार फैलाने के लिए वर्षों तक काम करने पर उन्हें शर्म महसूस होती है।
Sadly, during the past years I worked at Channel 1, I spread the Kremlin propaganda, and I am very ashamed of this. I am ashamed I allowed lies to be told on TV screens. I am ashamed I allowed Russian people to be fooled. We were silent in 2014 when it all started. We did not go out to protest when the Kremlin poisoned Navalny. We simply watched this inhumane regime. It is up to us to stop this madness. Come out to protest. Do not be afraid. They cannot put all of us in jail.
उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उस प्रदर्शनकारी को धन्यवाद दिया है जिसने एक प्रस्तुतकर्ता के पीछे एक संकेत रखते हुए युद्ध की निंदा की। श्री व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वे रूसियों के आभारी हैं जो यूक्रेन में संघर्ष जारी रहने के दौरान सच्चाई और गलत सूचनाओं को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के नेता ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य विश्व नेताओं से बातचीत की और कहा कि यह संवेदनहीन युद्ध है और उन्होंने वापस लड़ने की कसम खाई है।
Russian conscripts, listen to me very carefully. Russian officers, you've already understood everything. You will not take anything from Ukraine.
अमेरिका का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन में तीसरे हवाई हमले से पता चलता है कि संघर्ष में 3 सप्ताह के लक्ष्य का विस्तार हुआ है, लेकिन रूसी सैनिकों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि सप्ताहांत में बहुत कम प्रगति हुई थी और सोमवार को यूक्रेन में रूसी सेना को रोक दिया गया था। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने हमलों के विरोध के लिए यूक्रेनियन लोगों की प्रशंसा की और आक्रमण के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोषी ठहराया।
I think our general understanding that they continue to be frustrated by a very stiff Ukrainian resistance and they are not making the kind of progress on the ground that we believe they thought they would be making by this point.
अमेरिका ने मॉस्को को सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान करने के खिलाफ चीन को चेतावनी दी है। उधर सिडनी में एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और पुलिस को चौथे व्यक्ति के लापता होने की चिंता है। न्यूटाउन में 2 मंजिला बोर्डिंग हाउस में मंगलवार सुबह आग लग गई और 8 निवासी आग से बचने में सफल रहे। स्थानीय निवासी ल्यूक रैंकिन का कहना है कि जब आग लगी तो उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी और ये उनके पड़ोस के लिए एक डरावना अनुभव था।
Yeah, I lived in there for about 10 years until I moved house about 2 years ago. And seeing the place burn down last night, it was shocking. It was just totally... I never thought it would happen in a million years, but it did.
New South Wales police aag ko sandehjanak karar kar rahi hai. फेडरल सरकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने त्रिपक्षीय सुरक्षा सौदे और नौसैनिक अभियानों के लिए अतिरिक्त रक्षा क्षमता पर बात कर रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका को शामिल करते हुए ऑकस साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बड़े नौसैनिक जहाजों के निर्माण के लिए एक जहाज यार्ड में बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का वादा करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।
We expect construction to commence in 2023-2024 with initial operation capability by 2028 and a final operating capability by 2030. 500 jobs in the construction of this world-class shipyard.
ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि विदेशी आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर समस्याएं पैदा कर रही है जो लगभग आधी सदी में नहीं देखी गई हैं। वेस्टपैक बैंक के साथ मिलकर किए सर्वेक्षण में 2022 की शुरुआत में व्यापार की स्थिति में सुधार पाया गया, लेकिन सामग्री की कमी भी साफ दिखाई दी। परिणाम दिखाते हैं कि 1974 के बाद से श्रमिकों और सामग्री की कमी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसे अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों के साथ बदला जा सकता है। ACCI के मुख्य कार्यकारी एंड्रू मैकेलर का कहना है कि ये चुनौतियां जारी रहेंगी और व्यवसायों को अधिक प्रशिक्षण के माध्यम से इन कौशल की कमी को मिटाने की आवश्यकता होगी। उधर एक अदालत ने एक फैसले को पलट दिया है कि फेडरल पर्यावरण मंत्री को कोयला खदान के लिए अनुमोदन प्रक्रिया करने से पहले जलवायु परिवर्तन से बच्चों को होने वाले नुकसान पर विचार करना चाहिए। हाईस्कूल के छात्रों द्वारा 2020 में मंत्री सुजन ले के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन आज मंगलवार को फेडरल कोर्ट ने सर्वसम्मति से मंत्री सुजन ले की अपील के पक्ष में फैसला किया। समूह एक कोयला खदान के विस्तार को अवरुद्ध करने की मांग कर रहा था और अब पूर्ण फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस परियोजना पर निर्णय लेते समय बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के नुकसान पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जेम्स ऑल्सप ने ये कहते हुए परिणाम सुनाया कि इस मामले से इस जिम्मेदारी का कोई ताल्लुक नहीं है।
As distinct from over the tiny contribution to the overall risk of damage from climate change, a lack of special vulnerability in the legal sense, the indeterminacy of liability, and the lack of proportionality between the tiny increase in risk and lack of control, and liability for all damage by heat waves, bushfires, and rising sea levels to all Australians under the age of 18 ongoing into the future. Mean that the duty in tort should not be imposed.
उधर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में 2,503 कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी देते हुए कहा कि देश में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही देश में 60 से अधिक आयु के सभी लोग अब कोविड-19 बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चों के परिजनों और 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 72 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54 रुपए और 90 पैसे है। अब खेल समाचार। गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन स्मिथ ने प्लेयर्स चैंपियनशिप जीतकर अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। स्मिथ ने भारतीय खिलाड़ी अनिर्बान लहरी को एक स्ट्रोक से हराकर गोल्फ के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक को अपने नाम किया। खराब मौसम ने अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट को 5वें दिन तक खींचा। स्मिथ ने दिन की शुरुआत अच्छी की, लेकिन आखिरी होल में बॉल डालने की जगह पानी में बॉल पट करने के बाद उन्हें अपनी विजय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 38 वर्षीय क्वींसलैंड निवासी स्मिथ ने इस खिताब के साथ $5 मिलियन की राशि भी जीती और अब वैश्विक गोल्फ रैंकिंग के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। दूसरी ओर क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया की जीत हुई है। भारत ने श्रीलंका को तीसरे दिन ही 238 रनों से मात दे दी। इसी के साथ दो टेस्ट की इस सीरीज को भारत ने 2-0 से जीत लिया है। रोहित शर्मा की बतौर टेस्ट कप्तान ये पहली टेस्ट सीरीज थी। श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में भी संघर्ष करती हुई दिखी, जहां कप्तान डिमुथे करुणारत्ने ही शतक बनाकर अकेले लड़ते नजर आए। करुणारत्ने ने 107 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में श्रीलंका का खेल 208 के स्कोर पर ही सिमट गया था। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल आंशिक बादल रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 27 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में उमस के साथ बादल रहेंगे और न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 32 तक जाएगा। मेलबर्न में भी उमस के साथ बौछार की संभावना और यहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 27 डिग्री। कैनबरा में भी बादल छाएंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री। सिडनी में बारिश के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 25 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक या दो बौछार पड़ने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 29 डिग्री। डार्विन में बारिश के साथ तूफान की आशंका, वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 34 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 35 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।